हाँ जी अच्छा जी, ओंटारियो गवर्नमेंट ने अभी अनाउंस किया है कि हम अब फेज टू के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास जो है वेरी गुड न्यूज कि हमारे पास अब काफी जो वैक्सीन हैं, तो वी आर गोइंग इन, और उनको कह रहे हैं कि अब हम सारे हॉटस्पॉट्स में जा रहे हैं और हॉटस्पॉट्स में जो है वो हम प्रायोरिटाइज करेंगे इंडिविजुअल्स को जो कि एट हाई रिस्क कंडीशन पे हैं। तो मौजूद भाई इसका मतलब है कि वो कहते हैं कि अप्रैल जून के अंदर वही जो हमारा जो अंदाजा था कि मोस्ट ऑफ द जो लोग हैं ओंटारियो में एटलीस्ट उनको वन डोज तो हर हाल में मिल जाएगी, उनको मिल जाएगी। तो आज इसकी अनाउंसमेंट जो है प्रीमियर फोर्ड क्रिस्टन एलियट जो हमारी डेप्यूटी प्रीमियर है और मिनिस्टर ऑफ हेल्थ भी हैं और जो हमारी जो है सॉलिसिटर जनरल सिल्विया जोन्स, ये सारे आज मौजूद थे एक मीटिंग के अंदर। तो वहां पे ये जो है इन्होंने
कल आपने बताया था कि हमको 3.6 मिलियन लास्ट वीक मिले और अभी इस वीक जो है हमें 2.2 मिलियन
और आने वाली हैं और आने, तो वो कह रहे हैं कि इसलिए हम स्पीड अप कर रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे हैं कि हम जितने नेबरहुड्स हैं हम सब में चाह रहे हैं कि अब फटाफट इनको जो है लगाया जाए लोगों को, लेकिन वही वाली बात है कि अपॉइंटमेंट अगर आप ले लेते हैं तो जरूर आके आप अपना टीका लगवाएं, वरना वो अदरवाइज जो है वो जाया हो जाएगी।
तो यहां तक कि अगर अगर आपके पास ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपार्टमेंट्स में ऐसी जगहों पे रहते हैं आप नहीं जा सकते हैं वहां पर, तो भाई आप गवर्नमेंट से उसके लिए भी है कि वो आके आपको पिक करके ले जाएंगे या आपके घर पे आके
दे देंगे, आपको घर पे आके दे देंगे। तो अब ख्याल ये किया जा रहा है कि तकरीबन 9 मिलियन लोगों को ओंटारियो में मिल सकती हैं ये अभी अप्रैल से लेकर जून तक।
एग्जैक्टली, दैट्स
अ वेरी गुड न्यूज जी माज भाई। अच्छा जी, प्रीमियर फोर्ड साहब ने आज कहा है कि हम आने वाले दिनों में और फर्दर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो अनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि जो केसेस हैं बहुत ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस बहुत बढ़ गए हैं, जो आईसीयूज हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा फोकस जो है बेसिकली तीन रीजन्स पे ही रहेगा, यॉर्क, पील एंड ट्रोनो के अंदर, जो कि 60% ऑफ टोटल केसेस ओंटारियो में रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा अभी जो कोई तकरीबन आधा घंटा पहले जो खबर आई है वो ये है माजिद भाई कि ओंटारियो में कैबिनेट जो है इस वक्त एज वी स्पीक अभी वो बैठी हुई है और वो डिसाइड कर रहे हैं कि क्या स्टे एट होम के ऑर्डर्स दिए जाएं कि ना दिए जाएं।
प्लीज,
कल हमने बताया था और कल हमने इस पर पूरी डिस्कशन भी की थी कि तीन जो टॉप डॉक्टर्स हैं ओंटारियो के वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि ये चीजें हाथ से निकल रही हैं, हॉस्पिटल्स पूरी तरह से ओवरवेलम हो गए हैं, तो आप स्टे एट होम के ऑर्डर्स दें। उनकी कल की रिकमेंडेशन पे आज अभी कैबिनेट बैठी हुई है और उस पर तो हो सकता है बिकॉज दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी, तो कल तक हमारे पास ये न्यूज हो जाए। और अगेन वेयर यू कैन फाइंड दिस न्यूज, जैसी ब्रेकिंग न्यूज आएगी eawaz.com eawaz.com पे ये ब्रेकिंग न्यूज चल रही होगी। आप अगर आपको नहीं पता चला तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं और आपको पता। तो ये भी एक है कि सिर्फ आज जो उन्होंने अभी कहा था थोड़ी देर पहले कि जी हम स्ट्रिक्ट कर सकते हैं, कैबिनेट बैठी हुई है कि स्ट्रिक्ट तो आप जो करेंगे करेंगे, मीनवाइल वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ऑलरेडी अभी जो प्रोविंस है वो प्रोविंस वाइड शटडाउन में चल रहा है। कि ऑन टॉप ऑफ दैट प्रीमियर फोर्ड ने कहा था कि हम लोग जो हैं और रिस्ट्रिक्शंस लाएंगे और अब कैबिनेट कह रही है कि नहीं, जो कल डॉक्टर्स ने कहा है स्टे एट होम, तो हो सकता है कि एक दो दिन में ये स्टे एट होम की ऑर्डर्स आ जाएं। तो हम अभी ये ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहे हैं, प्लीज ब्रेस फॉर इट, हो सकता है आपको स्टे एट होम की ऑर्डर्स आ जाएं एक दो दिन में। बिल्कुल आ सकते हैं, आपको ये आ सकते हैं। अच्छा माज भाई, स्कूल्स जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा बंद किए जा रहे हैं और उनको कहा जा रहा है जी कि ये जो हैं 18 अप्रैल तक जो हैं ब्रैम्पटन, कैलेडन और मिसिसागा के स्कूल्स बंद रहेंगे। इसके अलावा वेलिंगटन, डेफरिन और जो गोल्फ के स्कूल्स जो हैं स्टार्टिंग टुमारो, कल से 19 तारीख तक वो बंद रह सकते हैं। और ये बात हमने कई दफा माजिद भाई की थी और ये तो हमने बताया भी था कि हमारा तो एक्सक्लूसिव इंटरव्यू था स्टीफन लेचे साहब के साथ आज से साल पहले माजिद भाई, साल पहले, और हमने उनको कहा था कि आपके सामने इटली की मिसाल है, यूके की मिसाल है, जर्मनी की है, यूएसए की मिसाल है, उन्होंने स्कूल खोले और फिर उनको बंद करने पड़े। तो उन्होंने कहा जी, स्टीफन लेचे साहब ने कहा कि हमने अपना पूरा ड्यू डिलीजेंस किया है, हम सारे एसओपीज फॉलो कर रहे हैं, हमने चीजें इन प्लेस की हैं, हमारा हाल में स्कूल खोलेंगे, हमारी अपनी खुद की जो है वो थी। और लेकिन अब हुआ फिर क्या कि बात वही हुई कि फिर से स्कूल जो है शटडाउन करने पड़े इनको, शटडाउन करने पड़े, जैसे कि यूनिवर्सिटीज
कल पील वाले बंद किया था, पील वालों ने आज जो है उन्होंने ऐलान किया है अभी थोड़ी देर पहले कि टोरंटो के सारे स्कूल स्टार्टिंग टुमारो उनकी ऑनलाइन टीचिंग होती रहेगी
जी,
मगर
जी,
जो इन पर्सन
टीचिंग नहीं होगी,
वो उसको उन्होंने बंद कर दिया कि सारे स्कूल, एंड दैट्स अ वेरी गुड मूव
जी,
वेरी गुड मूव।
हाँ जी, हाँ जी, तो वो कहते हैं जी कि हमने ये जो टोरंटो पब्लिक हेल्थ जो है उसने कहा था कि जी हमने कल रात ही अनाउंसमेंट कर दी थी, तो उस पर चल रहे हैं। अच्छा जनाब, ये जो है कोविड-19 की जो डेथ्स हैं ये जो लास्ट ईयर के जो फर्स्ट 9 मंथ्स थे उसमें ज्यादा हो सकती हैं ऑफिशियल फिगर से। आज इसकी जो है बात कर रही थी तारा मोरियार्टी, ये हैं प्रोफेसर ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन एंड पैथोलॉजी एट यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो। उन्होंने कहा है कि जी मैंने बहुत सारा डाटा जो है डिफरेंट प्रोविंसेस का वो मैंने स्टडी किया है और बहुत ज्यादा, उन्होंने कोई प्रोविंसेस को ब्लेम नहीं दिया, उन्होंने कहा, उन्होंने वर्ड यूज किया है इनएडवर्टेंटली के मतलब है गलती से उनसे ये हो गया है कि बहुत सारे लोगों की जो डेथ्स हुई कोविड 19 से वो उसको डेटा में नहीं ला सके क्योंकि शायद उनको हुआ वो घर चले गए, उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो हेल्थ सर्विसेज ले सकते एंड देन दे डाइड और उनको जो है रिलेटिव्स ने उनको दफना दिया था उनको कोविड 19। तो वो कहते हैं कि इस तरह की बहुत सारी जो चीजें हैं वो बहुत सारी मिस हुई हैं, तो जो हम ऑफिशियल फिगर डेथ्स की कनाडा में दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा हैं उससे जो कि ओरिजिनली हुई हैं। तो वो कहती हैं कि मैंने खाली ऑन्टारियो
अवेयरनेस भी नहीं थी
जी, अवेयरनेस उस वक्त ज्यादा नहीं थी, जी अवेयरनेस भी नहीं थी। और वो कहती हैं कि मैंने सिर्फ एक प्रोविंस नहीं, मैंने सारी तकरीबन प्रोविंसेस जो है और टेरिटरीज जो है उनको मैंने स्टडी किया है और उसके बाद जो है मुझे लगता है कि ये जो है इन्होंने प्रॉपरली टैली नहीं किया है। अच्छा जी, दो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, एक तो रेस्टोरेंट्स कनाडा और ऑन्टेरियो रेस्टोरेंट होटल एंड मोटेल एसोसिएशन, इन्होंने आज डकफोर्ड साहब को कहा है जो ऑन्टेरियो के प्रीमियर, उनको कहा है कि आप रिस्ट्रिक्शंस ला रहे हैं, चीजें ला रहे हैं, पैटियोज प्लीज खोल दें क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि हुआ क्या है कि आपने रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स कर दिया, जब आपने रिलैक्स किया तो हमने बेशुमार चीजें खरीद ली, अब जब खरीद ली तो फिर अचानक से आपका एक आ गया कि जी अब जो है हम इमरजेंसी ब्रेक लगा रहे हैं, इमरजेंसी ब्रेक में आपने पैटियोज के ऊपर डाइनिंग बंद कर दी, इसकी वजह से हमारा जो एस्टिमेटेड लॉस है दैट विल टच 100 मिलियन इवन ओवर 100 मिलियन।
आई फील बैड अबाउट इट।
जी तो वो कहते हैं कि ये पैटियो के ऊपर बैठ के जो खाना खा रहे हैं दो या चार लोग दूर दूर बैठ के, उनकी वजह से आपका कोविड 19 नहीं बढ़ेगा, तो आप प्लीज हमें जो इसकी इजाजत दें। तो अब ये देखेंगे इसके ऊपर क्या कहते हैं डकफोर्ड साहब, जैसे ही फिर न्यूज आएगी फिर हम उसके बारे में बताएंगे। अच्छा जी, आज क्या हो रहा है कि जो बड़ी ये जो 5 पावर्स हैं ये जो कि ईरान न्यूक्लियर डील के अंदर इन्वॉल्व थी, आज ये फिर से जो है ये आज बैठे हुए हैं निगोसिएशन टेबल के ऊपर और ये वियना के अंदर बैठे हुए हैं और ये ईरानियन ऑफिशियल्स जो है उनके साथ बात कर रहे हैं। यूएसए जो है वो बहुत ज्यादा, बाइडन साहब ने कहा था कि हम बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं इनके साथ बात करने के लिए, लेकिन ये जो इनका एक जो डेलीगेशन है वो आज जो ऑस्ट्रिया के अंदर था और वहां पे जो उनको हेड कर रहा है यूएस डेलीगेशन को वो है स्पेशल एनवॉय फॉर ईरान बॉब मैली, तो वो वहां पे हैं। तो अब ये जो 5 बाकी की जो कंट्रीज हैं ये चाह रही हैं, जो जर्मनी फ्रांस यूके ये सारे, तो ये चाह रहे हैं कि यूएस से वापस आके हमारे साथ इस टेबल पे बैठे। ईरान जो है उसका बहुत एक प्रिंसिपल स्टैंड है, वो कहता है कि ठीक है हम आपके साथ बैठेंगे, भी बैठे भी हुए हैं, बात भी करेंगे, यूएसए को बोलो जो ट्रंप ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए थे वो सैंक्शंस हटाएं,
रिलीज करो,
जब तक आप सैंक्शंस नहीं लगाएंगे ये न्यूक्लियर टॉक्स जो हैं ये फर्दर नहीं चल सकती हैं क्योंकि हमारे लोग जो हैं सफर कर रहे हैं। और ये बात भी हमने कई बार यहां पे की है कि वो कहते हैं हम वैक्सीन तक नहीं खरीद सक रहे हैं इस सैंक्शंस के रहते हुए, तो वो कहते हैं आप उठाएं। तो अब ये वो जो हैं स्टेट डिपार्टमेंट की स्पोक्स पर्सन जो है नेड प्राइस, वो कहते हैं कि हम बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा इंटेंशन है ईरान के साथ ये डिस्कशन आगे लेके जाने की, लेकिन टॉक्स टफ होंगी, वो तो हमें पता है क्योंकि ईरान झुकने वाला तो है नहीं ना भाई आपके सामने, तो वो तो आप उसके सामने रखेंगे शरायत, वो भी आपके सामने रखेगा, तो आप उसको मानेंगे, आप एक स्टेप चलेंगे तो वो भी आपके साथ 2 स्टेप्स चलेगा, आप कहेंगे जी कुछ भी नहीं मानेंगे तो वो बिल्कुल नहीं, फिर वो पड़ जाएंगे। तो वो कहते हैं जी कि निगोशिएशन आर गोइंग टू बी टफ, लेकिन हम चाहते हैं कि ये स्ट्रक्चर हो किसी तरफ जाने के लिए। मैरीलैंड के एक बिजनेस पार्क में जी एक शूटिंग हुई है और बहुत ही अजीब वाकया हुआ माजिद भाई, ये आदमी जो था पहले मैरीलैंड के बिजनेस पार्क में गया, फिर उसके बाद यूएस नेवी का जो एरिया था फोर्ट डेट्रिक का वहां पे गया, तो एक उसने वहां पे शूटिंग की, एक उसने वहां पे जाके शूटिंग की, अभी पुलिस को लोगों ने उधर बिजनेस पार्क में बुलाया ही था कि भाई यहां पे एक आदमी को गोली मार के एक आदमी चला गया, वो आदमी जो सस्पेक्ट था वो ऑलरेडी अपनी गाड़ी में बैठ के वो उधर जी नेवी के उस एरिया में पहुंच गया फोर्ट डेट्रिक में। तो वो दो तरफ जो है वो परेशानी हो गई. इतने में जो है वो आने शुरू हो गए मैसेजेस यूएस नेवी के भी कि यहाँ पे एक आदमी है और वो है. बहरहाल जी वो उसको सस्पेक्ट को पकड़ा और वो जो है नेवी ने फिर क्या किया कि इसको बोलते रहे कि भाई तुम ये इधर से मूव अवे करो, ये नेवी का एरिया. वो जब नहीं किया तो फिर नेवी वालों ने उसको गोली मार दी फिर उसको सस्पेक्ट को. तो वो कहती है, पुलिस कहती है ये दोनों जो अब इवेंट्स हैं ये रिलेटेड हैं क्योंकि एक ही आदमी है वहां पे. और बड़ा ही आज मतलब एक अच्छा ही जेस्चर दिखाया कि वो जो पार्ट था बिजनेस पार्ट था उसमें जब जिस आदमी बेचारे को गोली लगी ना तो वो गोली लगी हुई थी उसकी, तो वो एक दुकान के अंदर आ गया वहां पे जो एक बिजनेस आउटलेट था उसके अंदर. तो उसने इसको कहा कि प्लीज आई नीड हेल्प, तो उन्होंने फटाफट उसको बिठाया और फिर पुलिस को फोन किया एंड देन दे केम एंड देन टुक दैट मैन टू द हॉस्पिटल. तो मतलब उन्होंने ऐसे नहीं किया कि दरवाजे बंद कर दें या कुछ ऐसे, दे हेल्प हिम और इस तरह. अच्छा जी, रॉयटर्स की आज एक रिपोर्ट है और रॉयटर्स की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो यूरोपियन यूनियन के अंदर कुछ कंट्रीज जो है वो ये कह रहे हैं कि जिनको के लग जाएगा कोविड 19 का टीका तो उसको हम सर्टिफिकेट्स दे देंगे. तो ईयू कह रहा है कि ये कुछ कंट्रीज ईयू के जो हैं वो कह रहे हैं कि ये जब आप दिखाते हैं ऐसे सर्टिफिकेट्स तो इनकी लीगल बेसिस क्या है, वो इसको क्वेश्चन कर रहे हैं. वो कह रहे हैं कि ये कोविड 19 के आपको कुछ कंट्रीज जो कह रहे हैं हम आपको सर्टिफिकेट्स दे देंगे, जैसे कि यूके ने भी पिछले दिनों में कहा है इट इज नॉट पार्ट ऑफ ईयू लेकिन उसने कहा था कि हम देंगे. तो वो अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं ये जो है यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और यूरोपियन डेटा प्रोटेक्शन सुपरवाइजिंग जो कमेटी है वो कह रहे हैं कि इसकी वैलिडिटी क्या है, इसकी लीगल पोजीशन क्या है. लेकिन जो कंट्रीज हैं जिनके के अंदर टूरिज्म बहुत होता है क्योंकि अभी समर आने वाला है जैसे कि ग्रीस, स्पेन और पोर्चुगल है, वो कहते हैं कि नहीं, अगर ये आएंगे लोगों के पास सर्टिफिकेट्स और वो हमें आके यहां पे बताएं कि जी हमने ऑलरेडी कोविड 19 के टीके ले लिए हैं तो हम उनको आने देंगे क्योंकि दिस विल हेल्प आवर टूरिज्म इंडस्ट्री. तो हमारे लिए बहुत ये इंपॉर्टेंट है. तो अभी ये ईयू के अंदर ये डिबेट चल रही है कि ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. आज जनाब इसराइल और पैलेस्टाइन के अंदर फिर से आज चीजें गर्म हो गई क्योंकि वहां पे इसराइल ने एक जो आदमी है वो वेस्ट बैंक में ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में था और उसको गोली मार दी इन्होंने. और इनका कहना है, इसराइल का कहना है कि ये आदमी हमें थ्रेटन कर रहा था, जबकि जो उसकी बीवी जो उसी गाड़ी में बैठी हुई थी उसने कहा जी थ्रेटन करने का तो सवाल ही नहीं है, सिपाहियों ने हमको जब रोका तो हम तो उधर रुक गए और मेरा हस्बैंड जो था उसके पास तो कोई वेपन्स भी नहीं थे. तो इसराइल कहता है कि नहीं, ये जो इस तरह के लोग पैलेस्टाइन से आते हैं ये हमारे जो हैं पुलिस वालों के ऊपर अटैक्स करते हैं, तो एज अ प्रिकॉशनरी मेजर हमने उसको कहा कि तुम गाड़ी से निकलो. गाड़ी से जब वो निकला तो उसकी हाथ पता नहीं जेब में थे या क्या, तो वी थॉट के वी गन निकाल रहे, तो हमने इसको जो है गोली मार दी है और जो है इस तरह से चीजें जो है वो खराब हो गई हैं. अच्छा जी, माजिद भाई की बिल्कुल प्रिडिक्शन ठीक थी कल की और वही हुआ है. हालांकि जो इसराइल के प्रेजिडेंट हैं रूवेन रिवलिन वो कह रहे थे कि मैं बहुत पार्टी मेंबर्स जो हैं उनसे मैं बात कर रहा हूं और मैं लोग जो हैं खुश नहीं है, लॉ मेकर्स नतन्याहू साहब को फिर से वो चाहते नहीं है कि वो जो है प्राइम मिनिस्टर बने. आज आपकी बात वो कल वाली बिल्कुल ठीक है, आपने क्योंकि कहा था कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है और बिल्कुल एग्जैक्टली दैट्स व्हाट हैज हैपेंड. 30 लॉ मेकर्स जो पार्टी से बात करने के बाद आज, हालांकि ये ट्रायल पे इनकी करप्शन चार्जेस चल रहे हैं इनके ऊपर, प्रेसिडेंट साहब ने आज फिर से उनको इन्वाइट कर लिया नतन्याहू साहब को.
मे बी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री किसी जगह किसी शख्स पे
करप्शन चार्जेस चल रहे
हैं तो उसको प्रेसिडेंट के लिए, आप
हाँ प्राइम मिनिस्टर के लिए. तो आज जी प्रेसिडेंट साहब ने उनको बुला लिया और उन्होंने कहा जी आप अपनी मेजोरिटी कोलिशन आप अपनी बना लें गवर्नमेंट, तो उनको उन्होंने इनवाइट कर लिया. दिस वाज सो सरप्राइजिंग. मैंने कहा भाई ये तो कोई अजीब ही बात है. तो इस तरह हालांकि जो वहां पे लोग हैं वो भी खुश नहीं है. अच्छा जनाब, इससे भी बड़ा आज काम किया हुआ है कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब जो हैं उन्होंने जनाब एक जो है वो ड्राफ्ट अब साइन कर दिया है और उसके मुताबिक ही कैन हैव 2 additional 6-year terms एज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया. 20 साल से तो वो ऑलरेडी मजद भाई रूल कर रहे हैं और अब वो कहा जा रहा है कि ये रूल करेंगे 2036 तक.
यही गो,
ओ माय गॉड मजद भाई, ओ माय गॉड,
प्रेसिडेंट हो, पावर हो तो ऐसी हो,
तो ऐसी हो वाकई मजद भाई. और मगर ये इतना जिंदा कैसे रहेंगे, ऑलरेडी तो इनकी एज जो है मजद भाई 68 years है ऑलरेडी, ये 68 years के हैं.
ही इज इन वेरी गुड शेप. रशियंस जो है ना नॉर्मली दे लिव वेरी लॉन्ग.
हाँ, बड़ी स्ट्रांग बिल्ट के लोग हैं
इनके. जो आप पुराने जो प्रेसिडेंट्स थे उनको देख लीजिए, यू नो व्हाट, दे वर लिविंग वेरी लॉन्ग लाइफ. जैसे चाइनीज एंड रशियंस, दे लिव वेरी लॉन्ग लाइफ.
तो माजिद भाई वो कह रहे हैं जी कि अब मैं 2036 तक रूल करूंगा रशिया को जनाब, और आपको पता ही है कि पहली दफा इलेक्ट हुए थे 2000 में, तो
अब वो दुनिया को ये कह रहे होंगे कि डील करना तो मुझसे ही करो, ये नहीं है कि अब मेरे पास कोई और आएगा,
कहानियां नहीं सुनाई
हैं, मैं
बैठ जाए थे,
तुम लोग आते जाते रहोगे,
बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जनाब, आज क्या हुआ है कि आज जो यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के जो चेयरमैन हैं मार्को कैवलेरी, उन्होंने आज ये अनाउंसमेंट किया, उन्होंने कहा जी कि हमने बिल्कुल ये स्टडी किया है जो हमें डेटा दिया गया था एस्ट्राजेनेका का, और ये जो आई थी चीजें कि जी ये जो हैं क्लॉट्स जो हैं ये जो ब्लड के अंदर एसोसिएटेड हैं, बिल्कुल इनका रिलेशनशिप है, इनका रिलेशनशिप है। लेकिन जब जर्नलिस्टों ने पूछा कि आपके पास एविडेंस क्या है, तो उन्होंने कहा एविडेंस तो नहीं है क्योंकि अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन हमको ये पता चला है कि ये कोई ना कोई लिंक इनके बीच में है। अगेन दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी,
नहीं अगेन मगर ये मेरे पास, मैं कुछ भी कह सकता हूं, अगर मैं सबूत दे ही सकता हूं तो इट मीन्स दैट आपकी खुद की बात जो है जरा डगमगाने वाली है।
लेकिन अब माजिद भाई इसकी पोस्ट बहुत बड़ी है ना, इनकी यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के चेयरमैन है ये,
देन ही शुड ब्रिंग द
सबूत, मतलब इररिस्पॉन्सिबल आदमी तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता,
नहीं मगर ही शुड ब्रिंग द सबूत।
हाँ तो उन्होंने कहा जी एविडेंस तो नहीं है लेकिन हमको लिंक नजर आया है, तो अब जनाब जो लिंक नजर आया हम कुछ दिनों में आपको बताएंगे क्या लिंक नजर आया, जैसे वो ईद का चांद निकल,
उस वक्त तक तो हमारी आधी पॉपुलेशन को लग चुका होगा,
लग चुका होगा, मुझे भी लग चुका होगा,
फिर क्यों हमें फिर उस वक्त के बनाने से क्या फायदा है।
हाँ जी हाँ जी, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है जी। अच्छा फिर हम ऐसा करेंगे ऐसे स्किन खींच के निकाल देंगे, ठीक है।
नहीं मगर उसमें ये भी तो बात बताते चले ना आपके, अगर फर्स्ट 20 डेज में जिसने वैक्सीनेशन होता है आपको, अगर आपने 20 डेज पास कर दिए तो वो जो खतरा है लोगों को वो उसमें नहीं है,
नहीं
सिर्फ विद इन 20 डेज।
हाँ 20 डेज, ठीक है। अच्छा जी, ये इंडिया के अंदर नीति आयोग के एक मेंबर हैं हेल्थ, डॉक्टर वी के पॉल, और आपको पता है कि नीति आयोग जो है एक्सट्रीमली जो है प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें जो मेंबर हेल्थ हैं वी के पॉल, वो कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर नेक्स्ट 4 वीक्स आर गोइंग टू बी वेरी वेरी, आज उन्होंने 2 दफा यूज किया, वेरी वेरी क्रिटिकल, क्योंकि जो केसेस हैं वो बेतहाशा उससे फैल रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि डेथ्स भी बहुत ज्यादा ऊपर जा रही हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इंडिया का इतना भी हम उसकी बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि उसको शाबाशी देना भी इंडिया को बनता है, क्योंकि हमने 45 लाख पीपल जो हैं दे हैव ऑलरेडी बीन वैक्सीनेटेड इन इंडिया, और हम बहुत तेजी से वैक्सीनेशन जो हैं और भी बढ़ाते चले जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने एसओपीज फॉलो करें। इसी तरह की सिमिलर बात जो हेल्थ सेक्रेटरी हैं राजेश भूषण, उन्होंने भी कहा है कि प्लीज आप लोग अभी एसओपीज फॉलो करें, वी आर स्टिल नॉट आउट ऑफ द वुड्स बट वी आर डूइंग वैक्सीनेशन एट अ वेरी फास्ट पेस।
45 लाख तो कुछ भी नहीं है,
हाँ इतने बड़े मुल्क में, जी 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 जी, लेकिन उन्होंने शाबाशी दी अपने उसको, अपनी जो टीम है हेल्थ टीम जो, उन्होंने कहा कि बड़ा हमने काम किया ये
कंपेयर टू अमेरिका, अमेरिका को देख ले कि अमेरिका में
100 मिलियन से ऊपर जो चले गए हैं लोग,
200 मिलियन, और वो उसके बाद फिर अब क्या है कि पहले इन्होंने कहा था कि बाइडेन साहब ने कि फर्स्ट 100 डेज में मैं 100 मिलियन लगा दूंगा, और 200 मिलियन लगा दिए, और उसके बाद ये कि फर्स्ट मई तक पूरा का पूरा अमेरिका जो है वैक्सीनेटेड हो चुका होगा एटलीस्ट 1 डोज। नाउ दे चेंज द डेट जस्ट फ्यू मिनट्स अगो, जनाब बाइडेन साहब ने कहा है कि 19th of April,
नहीं कोई बात नहीं, आप बताएं बताएं, बस बस ठीक है, बस यही न्यूज थी वो।
हाँ.
तो वो जब ये इन्होंने राजेश भूषण साहब का जब ये आया ना, जब राजेश भूषण साहब ने कहा कि जी हम जो हेल्थ मिनिस्टर, उन्होंने कहा जी कि हमने वो किया है लेकिन आप अपने एसओपीज फॉलो करें, तो वहां पे जर्नलिस्टों ने फिर इनसे डेटा मांगा, उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में कितने लोग हैं, और जो है वो तो उन्होंने छोटे छोटे मुल्कों के नाम ले लिए, उन्होंने कहा स्पेन में इतने हुए हैं, उसमें इटली के अंदर इतने हुए हैं, और वो हुए हैं, तो वहां पे लोगों ने फिर अमरीका का कैटेगोरिकली नाम लिया। उन्होंने कहा जी कि आप ये छोटे छोटे मुल्क जहां पे कि जी वो 20 मिलियन लोग हैं या 30 मिलियन हैं या ये हैं या वो हैं, उनको आप छोड़ें, आपका मुल्क इतना ह्यूज है, आपको तो अपना चाइना और यूएसए के साथ मुकाबला करना चाहिए था, तो आपने वहां पे उनके साथ क्यों नहीं किया। तो उन्होंने कहा जी कि असल में यहां पे 2 प्रॉब्लम्स हैं, यहां पे प्रॉब्लम्स ये हैं कि एक तो अभी भी लोग बहुत सारे मुल्क के अंदर सीरियस नहीं है इसके बारे में, दूसरे जो है वो अभी भी बिलीव ही नहीं करते हैं कि उनको वैक्सीन की जरूरत है, उनको लगता है कि दिस इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल थिंग है, और ये ऐसे करके है, वो कहते हैं कि हम इसलिए उन मुल्कों के साथ कर नहीं सकते हैं, वहां पे जब गवर्नमेंट्स कोई ऑर्डर देती हैं तो लोग फॉलो करते हैं उनको, यहां पे लोग अभी भी अंतु परंतु कर रहे हैं कि क्या हम जाएं, क्या हम वैक्सीन लें नहीं लें, तो इसलिए जो भी कोई आ रहा है हम उसको दे रहे हैं और बहुत तेजी से इसके ऊपर काम हो रहा है और वो कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में फिगर्स जो है आपको अच्छी नजर आएंगी।
सही।
तो ऐसे है। अच्छा जी, हिंदू की आज एक रिपोर्ट है और ये जो है एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इंटरव्यू लिया गया है, द हिंदू ने लिया है सतेंद्र लांबा साहब का। सतेंद्र लांबा साहब वो बंदे थे जो कि जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जब प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तो उनके लिए, उनकी गवर्नमेंट के लिए बैक डोर चैनल से पाकिस्तान के साथ ये डिस्कशन करते थे, जिसको कि कभी सामने, ये वो चीजें होती हैं जिनको कभी सामने नहीं लाया जाता। सो ही वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन सतेंद्र लांबा साहब। तो आज उनका इंटरव्यू लिया है द हिंदू न्यूज पेपर में, वो आया है। तो वो कह रहे हैं कि आप ये जो डिस्कशन चलाते थे पाकिस्तान के साथ 2005 से मजद भाई 2014 तक ये जो है डिस्कशन चलाते रहे हैं, तो इन्होंने उनसे आज पहला सवाल तो पहले कश्मीर के ऊपर इन्होंने किया था, हिंदू के जो थे रिपोर्टर, उन्होंने कहा कि ये जो 2019 में इंडिया ने जम्मू और कश्मीर के में जो चेंजेस किए हैं, आर्टिकल 370 जो है वो हटा दिया है वहां से, और जो है तो इससे आपको लगता है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ कोई इस बात पर ताल्लुकात खराब होंगे? एंड दिस वॉज अ वेरी वेरी क्रिटिकल क्वेश्चन। तो इन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाने से इंडिया और पाकिस्तान की टॉक्स में कभी जो है वो रिटार्ट हो सकती हैं कभी, इफ दे थिंक कि अब हमको टॉक्स करने हैं, तो ये मसला कभी बीच में नहीं आएगा। एंड दिस वाज अ ह्यूज पॉलिसी स्टेटमेंट जो है जो आज उन्होंने दिया। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा अब आप बताएं कि ये अचानक से, पहले तो बीजेपी की गवर्नमेंट कह रही थी जी परे हट हैं पाकिस्तान को, अचानक से ये न्यूज आनी शुरू हो गई कि जी इंडिया भी बात करना चाहता है, पाकिस्तान भी बात करना चाहता है और बड़े लवी डवी आपके रिलेशनशिप्स हो गए हैं। तो क्या जो ट्रंप साहब भी पहले कहते थे और क्या जो बाइडन साहब ने भी आके कहा कि मैं इंडिया और पाकिस्तान में हम जो है बात करवा सकते हैं, तो आपको लगता है? सतेंद्र साहब का कहना है कि अमेरिका ने हमें बहुत दफा ये कहा कि इंडिया और पाकिस्तान के जो तुम्हारे जो मामलात हैं हम बीच में बैठने को तैयार हैं और हम आपके करेंगे। इंडिया ने हर दफा अमेरिका की इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया, उन्होंने कहा जी हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। एज अ रिजल्ट अगर कोई इनिशिएटिव लिया गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बात का, तो वो हम दोनों ने खुद से लिया है, नो थर्ड पार्टी वॉज इन्वॉल्व। अगेन उसने कहा जर्नलिस्ट ने कि ये बहुत बड़ी पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ये मैं दे रहा हूं पॉलिसी स्टेटमेंट। बिल बर्न्स जो थे सीआईए के जो चीफ हैं आजकल मजिद भाई, उन्होंने भी इस चीज का जिक्र किया है, उन्होंने कहा कि हां अमेरिका ने इनको कहा था कि हम तुम्हारे पास बीच में बैठने को तैयार हैं ताकि तुम्हारे मसले हल हों। तो उसने भी कंफर्म किया है सतेंद्र साहब की इस बात को कि कश्मीर के मसले को किया जा सकता है। अच्छा, फिर इन्होंने कहा कि जनाब आप जो हैं आपके मुल्क के अंदर ये इंडिया और पाकिस्तान में मामलात तय क्यों नहीं होते हैं? उन्होंने कहा जी तय दो वजह से नहीं होते हैं, एक तो क्या होता है कि पॉलिटिशियंस की बदनीयती आ जाती है, दूसरा मीडिया बिला वजह चीजों को दे ब्लो थिंग्स आउट ऑफ प्रोपोर्शन, जो लीक हो जाती हैं चीजें और वो गंद फैला देते हैं और उसकी वजह से जो ओरिजिनल आइडिया होता है उसके ऊपर काम नहीं होता। तो उसने जर्नलिस्ट ने कहा कि फिर आप इसका कोई सतेंद्र साहब आप इसकी मिसाल दें, उन्होंने मिसाल इसकी ये दी कि जिस वक्त ये थे मनमोहन सिंह साहब थे और मुझे कहा गया कि तुम एक बहुत हाई लेवल तुमने मीटिंग करनी है फॉर ट्रेड एंड ऑल दैट विद पाकिस्तान, तो आप लाहौर जाएं प्राइवेट जेट में। कहते हैं जिस वक्त मुझे उन्होंने कहा कि आप लाहौर जाएं, किसी तरह कोई स्टाफर या कोई जो मीडिया के साथ रिलेटेड था उसने मीडिया को बता दिया और मीडिया ने उसको यह बना दिया कि अब तो जी पाकिस्तान के साथ सारे मामला ठीक होने लगे हैं, कुछ खराबी नहीं है और ये तो लेट रहे हैं पाकिस्तान के सामने और ये और वो। कहते हैं एज अ रिजल्ट उस रात जब मैंने फ्लाई करना था मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब का फोन आया कि जस्ट लीव इट,
कैंसिल,
यू विल नॉट गो टू लाहौर। तो कहते हैं जी ये मीडिया जो है बहुत ज्यादा जो है गंद डाल देता है। अच्छा, फिर उन्होंने पूछा कि जनाब आप तो का क्या ख्याल है कि अगर जनरल मुशर्रफ साहब रहते तो ये चीजें जो है कश्मीर वगैरह की ये सवाल हो जाती? सतेंद्र साहब का कहना है जी कि दो मौके ऐसे आए थे, एक तो हमें पता ही है कि वो जब वाजपेयी साहब गए थे और वो सारा कुछ वो था। उन्होंने कहा जी कि दूसरी दफा मनमोहन सिंह साहब के जमाने में मुशर्रफ साहब के साथ पूरी डील कश्मीर की हो गई थी एंड वी जस्ट हैड टू साइन इट, वी जस्ट हैड टू साइन इट. लेकिन मुशर्रफ साहब से मेन गलती क्या हो गई, पहली दफा तो ये हुआ था कि जो हॉकिश एलिमेंट्स इंडिया की साइड पे थे वो वाजपेयी साहब के जमाने में, उन्होंने कहा कि नहीं हम पाकिस्तान के साथ ये डील नहीं कर सकते. इस दफा पाकिस्तान में क्या हुआ कि मुशर्रफ साहब से बहुत मेन गलती हो गई और उन्होंने वो जो इफ्तिखार चौधरी साहब जो चीफ जस्टिस साहब थे उसका मसला ऐसा शुरू हुआ कि ऐसा फॉल आउट आना शुरू हुआ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कि मुशर्रफ साहब ने कहा जी कि मैं तो ये कश्मीर वश्मीर पर अभी बैठ के बात नहीं कर सकते, आई एम वेरी डिस्टर्ब बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक सीन, तो मुझे ये चीजें जो है वो करनी पड़ेंगी. और वो कहते हैं ओनली द ओनली थिंग लेफ्ट वॉज मनमोहन सिंह साहब के सिग्नेचर्स और मुशर्रफ साहब के सिग्नेचर उस पेपर के ऊपर. एवरीथिंग द होल डॉक्यूमेंट इज रेडी. उन्होंने कहा जी उस डॉक्यूमेंट में क्या था, उन्होंने कहा वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा. तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा कि डील क्या थी, व्हाट वाज द डील. तो आज का ये इसने आज तहलका मचाया हुआ हिंदुस्तान के अंदर जब से ये सत्येंद्र लांबा साहब के ये इंटरव्यू का जो ये आया सारा, तो बहुत सारा जो है ये इसके अंदर है. अच्छा महेश भाई, आपको पता है कि आपकी खुशी के लिए एक दिन मैं बाजी की खबर लाती हूँ, एक दिन दीदी की है ना जी. तो आज दीदी की खबर है, आज दीदी की खबर, ठीक है. वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं जी ममता बनर्जी, उन्होंने कहा है कि ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है ये बहुत ज्यादा धांधलियां कर रही है. आपको पता है कि वहां पे जो इलेक्शंस चल रहे हैं इंडिया में, कि पांच स्टेट्स में इलेक्शन चल रहे हैं, तो वेस्ट बंगाल इज वन ऑफ दैट. वो कहते हैं जी ये बीजेपी की गवर्नमेंट बेताशा धांधली कर रही है. उन्होंने अपने दो जो हैं कैंडिडेट्स उनका नाम लिया जो टीएमसी इनकी जो है तृणमूल कांग्रेस जो है, सुजाता और खनाकत, कहते हैं जी उनको जो है अंदर जाने नहीं दिया अपना वोट डालने के लिए, और दूसरे जो पोलिंग स्टेशन थे उसके ऊपर हमारे जो लोग थे उसके ऊपर इन्होंने असॉल्ट की बीजेपी ने के मेंबर्स ने, और इन्होंने जो है हमारे लोगों को डराया धमकाया, एज अ रिजल्ट हमारे लोग वहां पे जाके वोट्स नहीं डाल सके. फिर उन्होंने और एलिगेशंस लगाए हैं, उन्होंने कहा है जी कि बीजेपी इज डेविल इन डिस्गाइज, क्योंकि वो लव जहाद तो करती है और वो कहती है कि मैं एक हिंदू पार्टी हूं और मैं हिंदुत्व का जो फिलॉसफी है यहां पे बढ़ाना चाहती हूं और जो है मैं मुसलमानों के खिलाफ हूं, लेकिन ये मत इस गलत फहमी में रहें कि ये हिंदुओं के भी बड़े भाई हैं, ये हिंदुओं के भी दोस्त नहीं है.
अच्छा,
तो ये आज जी दीदी ने कहा है. और उन्होंने कहा है जी कि ये समझते हैं कि ये गुजरात से आके वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट बनाएंगे, वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल के लोग ही गवर्नमेंट बनाएंगे, कोई गुजराती यहां पे आके गवर्नमेंट नहीं बना सकता. तो जनाब आज दीदी का गर्मा गर्म ये बयान आया है, तो आप जो है इसको सारे अखबारों में उसमें हिंदुस्तान में आप पढ़ सकते हैं. अच्छा पाकिस्तान में जी हुआ यह है कि अवामी नेशनल पार्टी जो हमने प्रिडिक्ट किया था आज से चार महीने पहले मजीद भाई, एग्जैक्टली दे आर पीस बाय पीस दे आर फॉलिंग अपार्ट. आज अवामी नेशनल पार्टी जो है उन्होंने उनको वो जो
फॉलिंग अपार्ट, फॉलन अपार्ट,
दे हैव ऑलरेडी यस. तो आज उन्होंने बड़ा बुरा मनाया, उन्होंने कहा जी हमें शो कॉज नोटिस क्यों इन्होंने दिया है. तो उन्होंने कल कहा था ना पीडीएम ने कि भई आप लोग जो है मीटिंग्स अटेंड नहीं करते हैं, ये उन्होंने कहा जी करें ना करें हम बहरहाल पार्ट ऑफ अलायंस थे, अब हम जो है पार्ट ऑफ अलायंस नहीं है, हम अपने अलहदा कर रहे हैं और आपके साथ हमारे वक्रेवे बहुत बढ़ गए हैं तो इसलिए अब हम आपके साथ ज्यादा नहीं चल सकते हैं, ठीक है जी. अच्छा जनाब मुल्क की हालत जो है वो जरा इतनी अच्छी नहीं चल रही है, इकोनॉमिक फ्रंट पे जरा काफी स्ट्रगल चल रही है पाकिस्तान की. तो आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं खुद पर्सनली जो आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्ज जीवा, उसके साथ मैं बात करूंगा और उसको मैं बताऊंगा कि ये जो नेशनल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पाकिस्तान के ऊपर आई है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जो दी है, ना सिर्फ पाकिस्तान और भी बहुत सारे मुल्क जो हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, इस हालत में हम लोगों को नहीं छोड़ सकते हैं, हमको लोगों को कोविड 19 रिलेटेड पैकेजेस और रिलीफ देनी पड़ेगी, और चूंकि हम वो दे रहे हैं तो हम आपकी शरायत नहीं मान सकते हैं. एंड इवन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस कोई भी गरीब मुल्क जो है आपके पैसे वैसे और आपकी कंडीशंस इस सूरत में नहीं मान सकेगा. तो इसलिए उन्होंने आज कहा है कि मैं उनसे बात करूंगा एंड आई विल ट्राई टू यू नो निगोशिएट अ डील उनके साथ जो है वो करेंगे. इंटीरियर मिनिस्टर शेख रशीद अहमद साहब जो है वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब जो है वो अपोजिशन के साथ बात करने को तैयार हैं, बट इट डजंट मीन कि जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं प्राइम मिनिस्टर उससे पीछे हट जाएंगे, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं उनके ऊपर चलाए ही जाएंगे. इस सिलसिले में जो है प्राइम मिनिस्टर साहब ने बैरिस्टर अली जफर साहब से भी बात किया और उन्होंने कहा है जी कि आप इसके साथ साथ जो हम अपोजिशन के साथ बात करेंगे, उनका बहुत सारा एतराज आया था कि जी ये हालांकि मतलब है फोन कॉल सारी उनकी हैं कि इस बंदे को पैसे दे दो और इसको वोट दे दो और ये है, लेकिन एतराज उन्होंने कर दिया पीटीआई की गवर्नमेंट पे कि तुम लोग जो है करप्शन करते हो. हैं जी, तो जो सेनेट के जो इलेक्शंस हुए थे अभी रिसेंटली, तो उस सिलसिले में आज इमरान खान साहब ने फिर से आज जो है वो ऑर्डर्स दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये सारा ये जो पैसे का खेल है सेनेट के इलेक्शंस में, इस सबको खत्म किया जाए और रिफॉर्म्स लाएं, उसके ऊपर काम करें। तो उसकी आज सारी डिटेल्स जो हैं ये शेख रशीद अहमद साहब कह रहे थे, और वो कह रहे थे कि हम अब सारी जो पार्टीज हैं उनको ऑन बोर्ड लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे नेशनल इशूज हैं और हम चाहते हैं उनके ऊपर इनका कंसेंसस हो ताकि ये फटाफट बिल्स जो हैं पास किए जाएं। तो ये है। अच्छा जनाब, अच्छी खबर ये है कि रशियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जे लेवरॉप, वो दो दिन के दौरे पे अब इस्लामाबाद पहुंचे हैं, और ये जरा प्यार बढ़ रहा है पाकिस्तान और रशिया के बीच में, और जो पुरानी बातें हैं ये लोग भूल रहे हैं। तो आज जब जिस वक्त ये इस्लामाबाद में पहुंचे तो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज इनको जो है वो किया रिसीव किया। लेकिन इस तस्वीर के अंदर ये खबर तो अभी हम आपको सुनाते हैं ये क्या है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे नजर आई, शाह महमूद कुरैशी साहब की जो छतरी है वो किसी और आदमी ने उठाई हुई है, जबकि जो सर्जे लेवरॉप हैं उन्होंने अपनी छतरी खुद से उठाई हुई है। हाँ जी, तो जब तक ये हमारे रहेंगे ना ये गुलामाना किस्म के मेंटालिटी, तो फिर तो मजबई काम ऐसे ही चलेंगे मुल्क में। खैर, एनीवेज दिस इज बिसाइड द पॉइंट, ये तो हमने बातों में से बात निकाली है, असल खबर ये रही।
अच्छा, उनकी शाह महमूद कुरैशी की जो छतरी है वो पिंक है।
हाँ,
और
हाँ, वो औरतों के बहुत बड़े सपोर्टर है ना। अच्छा, ये भी आपने बात में बात,
रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी छतरी
काली है, काली है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि अगर तुमने शैतानी हमारे साथ की तो काले बादल छा जाएंगे। ये धमकी का निशान है,
धमकी का निशान
है। नहीं नहीं जी, हमने ऐसे ही हमारा जो जर्नलिस्टिक शैतानी दिमाग है ये बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वहां पे बड़ी लवी डवी टॉक्स हुई है, उन्होंने कहा जी हम इकोनॉमिक टाइज पाकिस्तान के साथ बढ़ाना पड़ते हैं। सर्जे लेवरॉफ साहब का कहना है कि इस वक्त एट दिस पॉइंट इन टाइम, हम ये भी पता नहीं अमरीका जैसा बयान है, पाकिस्तान हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड पार्टनर है और हम पाकिस्तान के साथ जो है बहुत सारी चीजों में जो है काम करना चाहते हैं, इंक्लूडिंग ये जो पीस प्रोसेस चल रहा है हम आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं, जो पाकिस्तान कहेगा हम बिल्कुल उसको एंडोर्स करेंगे अफगानिस्तान के साथ। उन्होंने कहा है कि हमारी ये जो पिछली बिटरनेस थी उसको हम भूल के, और उन्होंने कहा कि देखें अगर हम पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुक चाहते थे तभी हमने ये एससीओ की जो मीटिंग अभी कराई थी वो कराई थी, उसमें चाइना को भी बुलाया था, अफगानिस्तान, तालिबान, आपको सारे, हम भी बैठे थे रशिया की। हम इसीलिए चाहते हैं कि इस इलाके के अंदर जो है पीस आए और यहां पर जो है ट्रेड और कोऑपरेशन जो है वो बढ़े। अच्छा जी, वी हैव रीच राइट एट द एंड ऑफ आवर न्यूज, और पाकिस्तान के अंदर आपको पता ही अगर आपको पता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। माजिद भाई, डॉक्टर जो है वो लंदन से आते हैं या दुबई से आते हैं आपको देखने के लिए, और बेचारा गरीब बंदा जो सिंध में है उसको कुत्ता काट ले तो उसके लिए वैक्सीन नहीं है, है? हाँ। लेकिन अगर आप बीमार हो गए, अगर आप बड़े बंदे हैं तो आपके लिए डॉक्टर दुनिया के सारे हिस्सों से आएंगे।
सही,
तो यही एग्जैक्टली हुआ है। एक्ट्रेस हमारी जो है पाकिस्तानी एक्ट्रेस इफ्फत उमर साहिबा, वैसे तो उन्होंने आज बड़ा अपोलोजाइज किया है, लेकिन उन्होंने लाइन जंप करके, यानी बहुत सारे लोगों की अपॉइंटमेंट्स थी कोविड 19 के वैक्सीनेशन के लिए लोगों के लिए, तो उन्होंने डॉक्टर साहब को कहा कि नहीं 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 नहीं, उन्होंने छोड़ो जी, पहले मेनू लगाओ टीका। तो जब लोगों को पता चला तो हमारी तो अब कौम भी बड़ी वो जरा थोड़ी हो गई है ना, वैसी जाग गई है कौम, तो वो उनको बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा मोहतरमा आपका तो टाइम भी नहीं था और आपकी तो बारी भी नहीं थी, तो आपने ऐसे कैसे किया। तो उसने कहा कि यस आई एम वेरी सॉरी, मैंने अपना प्रिविलेज यूज किया था और मैं आई एम वेरी अशेम्ड और मुझे ये करना नहीं चाहिए था, तो मैं ये जो है, लेकिन अब देखने वाले आने वाले
वापस ले ले,
मेरा इंजेक्शन निकाल लो वापस,
इंजेक्शन निकाल
खींच लो खून के जरिए। और जनाब एक मूवी थी मिशन मजनू चल रही है वहां पे इंडिया के अंदर, उसकी आजकल शूटिंग चल रही है, तो इसमें सिद्धार्थ मल्होत्रा साहब जो हैं वो बड़े जख्मी हो गए हैं, वो इसके अंदर वो कर रहे थे जंपिंग वगैरह कुछ कर रहे थे, कुछ स्टंट सीन कर रहा था, तो अचानक उनका घुटना जो है एक लोहे के किसी चीज से लगा, जिसकी वजह से उनका घुटना जो है काफी उसमें दर्द आ गई, चोट आ गई, हालांकि ब्लीडिंग भी नहीं आई और स्वेलिंग भी नहीं आई, लेकिन वो चल वल नहीं सकते थे, फिर भी उन्होंने बड़ा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाते हुए उन्होंने अपनी जी वो सारी जो है शूटिंग जो है रिज्यूम की और सारी उसको कंप्लीट की। और इसमें पहली दफा इनके साथ इस फिल्म में काम करेंगी साउथ इंडिया से जो इनकी एक जो ब्यूटी है इनकी रश्मिका मंदना, वो जो है इसमें लीड रोल में, ये हॉलीवुड की मूवी है तो ये अब साउथ से आई है उसमें काम करने के लिए, तो वो इनके साथ काम करेंगी। एंड जनाब हमारी एब्सोल्यूटली लास्ट न्यूज, हमारे जो अब लास्ट एंड फाइनल ओडीआई साउथ अफ्रीका के साथ कल होने वाला है माजिद भाई, उसके लिए बड़े चेंजेस हैं ऑन द होराइजन। तो वो चेंजेस क्या हैं जी, पाकिस्तान सोच रहा है कि आसिफ अली को निकाल के हैदर अली को खिलाएंगे, इसके अलावा वो सोच रहे हैं जी कि क्योंकि उन्होंने कुछ परफॉर्म खास नहीं किया पिछले दो मैचेस में, तो शादाब खान का तो हम बता ही चुके थे, शादाब खान चले गए हैं तो शादाब खान को रिप्लेस कर रहे हैं स्पिनर उस्मान कादिर। इसके अलावा जो है पीसीबी ये भी सोच रहा है कि सरफराज अहमद को फाइनल ओडीआई के लिए वापस लाया जा सकता है।
क्या बात, दैट विल बी अ ग्रेट वन।
तो बस माजद भाई ये देखने की बातें हैं कि अब कल क्या होता हैगा।
हाँ जी हमारे हाँ बॉयज अच्छा खेलेंगे।
हाँ अगर हमारे बॉयज अच्छा खेले तो हम आपको हलीम खिलाएंगे। तो साउथ अफ्रीका जो है उसको हम हलीम खिला सकते हैं, हैं
एक दफा हलीम खा ली तो सोते रहेंगे
बस, फिर खेलना नहीं जाए, खेला नहीं जाएगा,
खेलते रहेंगे।
यहाँ माजद भाई जैसे उसने साजिश की है ना क्विंटन डिकॉक ने,
हाँ
हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे इशारा जो उसने किया है, अब पाकिस्तान को भी कुछ साजिश करनी पड़ेगी, या इनको पावे भाई एक, या इनको पावे या निहारी या हलीम, कुछ
बिरयानी खिला दे बस,
है
बिरयानी खिला दे
और लस्सी साथ पिला दे,
बस हो गया,
बस हो गया मामला तुम। बताइए
मैं आपको जो कल जो वो जो किस्सा उठा था,
हाँ
कि भाई उन्होंने इशारा एक तरफ किया और आप बकौल आंखें कहीं निशाना कहीं आंखें, तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट?
हमारे बैट्समैन की गलती है, फकर जमान की गलती है, बिल्कुल गलती है, क्योंकि देखिए माजिद भाई उसने अगर इशारा उस दूसरे को भी किया है, भाई तुम क्यों स्लो हो गए हो, तुम थक गए हो, बुढ़े हो गए हो, क्या है इंजरी आ गई है तुमको, तुम अपना भागते रहो ना भाई,
तो भागते
तुम अपना भागते रहो, तुम अपना भागते रहो। अब लेकिन वही है ना माजिद भाई, वैसे मैं और आप जो है ना बहुत ही पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स देते हैं, मेरे और आपसे प्यार नहीं रहेगा कम्युनिटी का।
क्यों?
क्योंकि हम हमेशा गलत बात करते हैं, हम वी आर नॉट प्लेइंग टू द गैलरीज,
यू हैव योर ओपिनियन, आई हैव माय ओपिनियन, दे हैव देयर ओन ओपिनियन, दे हैव देयर ओपिनियन, आई हैव माय ओपिनियन, यू हैव योर ओपिनियन, सो वी हैव ओपिनियंस, दीज आर कॉल्ड ओपिनियंस।
यस ये जो हमारे ऑप एड्स चल रहे हैं ना ये ज्यादा दिन नहीं चलेंगे, लोग कहेंगे आफा बाजी को ये माजिद जमाल और शाजिया बीवी को हटाओ, ये हमारे मतलब की बातें नहीं कर रही है, हमारे मुंडे के साथ ज्यादती हुई और ये कह रहे थे ठीक किया है।
भाई तू फखर जमान साहब फखर करो अपने ऊपर और भागते रहो,
हाँ। तुम क्यों स्लो हो रहे हो,
तुम क्यों स्लो हो रहे हो,
टांगों में दर्द निकल आई अचानक,
फिर और भी सब देखा कि यार ये तो इसने तो मेरे साथ गेम खेल लिया,
हाँ गेम खेल लिया,
बट आई फेल्ट सॉरी, आई रियली
डिड, मैं आई आल्सो फेल्ट सॉरी माजिद भाई बिकॉज ही वाज अबाउट टू क्रिएट हिस्ट्री राइट, 7 रन उसके हो जाते तो वो जो है डबल सेंचुरी हो जाती है और वो रिकॉर्ड तोड़ देता राइट।
हाँ।
तो अब लेकिन ये जो ऊपर डब्बा दिया हुआ ना माजिद भाई, ये ऊपर वाले ने इसीलिए दिया है कि इसको कभी कभी खुद भी इस्तेमाल करने, ऐसा नहीं है कि आपको मुंह में नवाले माजिद भाई डाल रहे हैं तो ही आपने खाने हैं, खुद भी कभी डब्बा इस्तेमाल करके हाथ से कर ले माजिद भाई,
और उसके बाद फिर रो रहे हैं कि भाई वो जो है वो उसने चीटिंग कर दी, देयर इज द चीटिंग, यहाँ तो बेसबॉल में इट हैपेंस ऑन अ डेली बेसिस, एवरी डे एवरी गेम यू सी दीज ट्रिक्स।
माजिद भाई सॉकर में क्या होता है, सॉकर में वो लड़का जो है वो इस तरफ जा रहा होता है और वो जो गोल कीपर है इस तरफ जाता है और वो किक इस तरफ करता है,
चीटिंग होगी,
व्हाट इज दैट,
चीटिंग होगी,
ये चीटिंग है, ये चीटिंग है,
आप जो है वो गोलकीपर के ऊपर मारे,
आपने वो देखे हैं वो जो है उसके रोनाल्डो के, आपने वो कुछ वो गोल्स देखे हैं टर्न करके पैर पीछे से ऐसे करके मार रहे हैं, लोग समझ रहे हैं ये टर्न करके जा रहा है, ये नहीं है कर रहा, ये किसी को वो कर रहा है फ्लिप करके जैसे, ये किसी और को अपना बॉल दे रहा है और फिर वो क्या हो रहा है, वो लड़का गोलकीपर उस तरफ देख रहा है, ये फ्लिप करके जो है वो गोल कर रहा है
ना, सो दैट्स अ चीटिंग।
तो ये भाई बस मजे भाई, मैं और आप न्यूज रूम से बाहर जा रहे हैं,
मेरा ख्याल है यही रोक देना चाहिए,
कहीं को नहीं रोके, ब्रेक लगाए
इमरजेंसी ब्रेक लगाए, क्योंकि अभी जो है मामला अभी फोन आने शुरू हो गए यहाँ पर, सर आप क्या बात कर रहे हैं आप,
तुम साढ़े मुंडे के खिलाफ गल कर रहे हो, हाउ डेयर यू,
नहीं फखर जमा आई लव यू,
वी लव यू
ओके,
नहीं
वी लव यू, डोंट वरी,
नहीं आई ओनली लव टॉम क्रूज,
प्लीज प्लीज अपने मुंडिया ना भेज
मजद भाई ठहर जाओ, ऐसी तैसी हम भी मलक हैं, बुलाओ सही, अभी भी बाहर मिलो मुझे तुम,
अच्छा
कोई कहीं अभी भी ठुकवा सकते हैं,
हाँ तुम बाहर मिलो, इस वाले दरवाजे से मैं उस दरवाजे से बाहर निकल जाऊंगा, तुम मेरा वेट करता रही सब, ये भी आज की न्यूज और कल पता नहीं हम यहाँ होंगे,
न्यूज रूम में बैठे होंगे या नहीं
अब पता नहीं,
नए लड़के होंगे शायद
आज की गुफ्तगु के बाद, पता नहीं कल हम इस न्यूज रूम में होंगे नहीं होंगे,
माजिद जमाल एंड शाजिया मलिक हैव बीन फायर्ड,
यू नेवर नो, है ही तो अब ओ आरफा जी को कॉल ना करना, हमें कॉल कर, हमको कॉल कर, एनीवे आप बताएगी न्यूज इंशाल्लाह ताला कल, वही टाइम आपको पता है 5:15 अब यहाँ होंगे आपके साथ और बाकी न्यूज कर देंगे, होपफुली कीप माय फिंगर्स क्रॉस, बहुत बहुत शुक्रिया जी,
थैंक यू मच, आई विल सी यू टुमारो
इंशाल्लाह।
You are listening to WTOR 770 AM, Youngstown, Toronto.
Shahji Rexdale hunde pe leni ho Sonata Elantra ya phir 270 pe jaldi se Shah Ahmed ko abhi phone mila lo re kyunki Shahji ab Rexdale hunde pe
कारों के जादूगर शाह अहमद अब रेक्सडेल हुंडई पर हैं और शाह जी से बेहतर प्राइस और सर्विस आपको कहीं नहीं मिलेगी। कॉल करो 416-817-2720
क्योंकि शाह जी रेक्सडेल हुंडई पे।
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नु मिलेगी ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
S&S Lawyers को इन्हां सारे सवालां दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानन लई या सलाह लैण लई अज ही S&S Lawyers नु कॉल करो 416-655-2000।
चंद दोस्तों और पड़ोसियों से मुलाकात करना, काम के बाद साथियों के साथ जमा होना, किसी दोस्त की शादी में शामिल होना, सब बेजरर मालूम होते हैं, लेकिन ये इस किस्म की चीजें हैं जिनसे ओंटेरियो में कोविड 19 के मामलों में नुमाया इजाफा होता है। माशरती फैलाव की वजह से ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, हमारे अस्पताल बेबस हो सकते हैं और हम सब खतरे से घिरते जा रहे हैं। वैक्सीन हमारी हिफाजत में मदद करेंगी, लेकिन जब तक ये वसी पैमाने पर दस्तियाब नहीं हो जाए, हम सबको सेहत आमा के मशवरे और हिदायत पर अमल करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि घरेलू सामान खरीदने जैसी जरूरी वजूहात के अलावा घर पर ही रहें, घर पर रहें, महफूज रहें, जिंदगियां बचाएं। हुकूमत ओंटेरियो की जानिब से अदाशुदा।
ओ मैं क्या जल्दी तैयार हो जा, फर्नीचर पसंद करदे करदे भी टाइम लगना।
हाँ सोडी फर्नीचर ही तो जाना है, अपने घर दे कोल एयरपोर्ट रोड वाली लोकेशन ते।
हो नहीं हुन आपा उना दी कैनेडी लोकेशन ते जाना, हुन उना दा पूरा स्टाफ पूरी क्वालिटी नाल इको छत नीचे अपनी सर्विसेज देवेगा।
सोडी फर्नीचर कम्युनिटी दा सब पुराना फर्नीचर स्टोर हुन अपना फर्नीचर कैनेडी लोकेशन तो ही सेल करेगा। अपनी पसंद दा फर्नीचर वधिया डील्स ते लैण लई अज ही आओ इना दी कैनेडी लोकेशन 142 कैनेडी Road South Brampton Day. Call 905-874-7171.
J&G Mortgages deals with mortgages for self-employed, financing for second mortgages, 100% financing on builder purchases, new immigrants and low rates. If you're looking for a career in mortgage industry, J&G Mortgages is hiring for new and experienced mortgage agents. For more information, call Jarmanjeet Singh or Gurpreet Obey at 416-898-3800. 416-898-3800 ब्रोकरेज लाइसेंस नंबर 10034।
कोविड 19 की वैक्सीन है और आप?
मुझे कैसे पता चलेगा कि कोविड 19 की वैक्सीनें महफूज हैं?
जब भी कोई नई चीज आती है तो सवालात का जहन में आना आम बात है। हम आपको आगाह करना चाहते हैं कि हेल्थ कैनेडा सिर्फ उन वैक्सीनों की मंजूरी देता है जो महफूज, मौसर और आला तरीन मयार की हामिल होती हैं। कैनेडा अपने आला मयारात और सख्त गिर वैक्सीन के जायजे के अमल की बदौलत दुनिया भर में जाना जाता है। कोविड 19 की वैक्सीनों के बारे में canada.ca/covidvaccine पर मजीद मालूमात हासिल करें। हुकूमत कैनेडा की तरफ से एक पैगाम।
पैसे बचाने के चक्कर ना वीजे दी एवें खज्जल खुआरी ना कराओ, सीधे VSR लॉ ऑफिस जाओ।
VSR लॉ ऑफिस आओ, वीजे दियां सारियां प्रॉब्लम दा जल्दी हल पाओ।
तुहाडे अपने शहर विच स्टूडेंट वीजा,
विजिटर वीजा,
वर्क वीजा,
सुपर वीजा,
रेजिडेंस वीजा,
विजिटर वीजा एक्सटेंशन,
स्पाउस वीजा,
वर्क वीजा, परमिट ऑन साइट,
बिजनेस एंड इन्वेस्टर वीजा,
स्पाउसल ओपन वर्क परमिट, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप इनसाइड आउटसाइड कनाडा, पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स स्पॉन्सरशिप। VSR लॉ ऑफिस नु कॉल करो 416-602-0002 थे 416-602-0002।
CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर के साथ अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा खुशियां दें। CIBC ग्लोबल मनी ट्रांसफर की $0 ट्रांसफर फीस का फायदा उठाएं और अपने परिवार तक पहुंचाएं और भी ज्यादा पैसे। आज ही cibc.com/globaltransfer पर जाएं और प्रोमो कोड GMT50 के साथ अपने पहले ट्रांसफर पर वापस पाएं $50।
शर्तें और सीआईबीसी फॉरेन एक्सचेंज रेट्स लागू।
सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू अल्लाह। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर वो इदारा है जो बिना किसी कलर, रेस, रिलीजन के हर एक की खिदमत में सरगरम है। इस माह रमजान में जो कि नेकियां बांटने और समेटने का महीना है, आइए हम और आप मुस्लिम वेलफेयर सेंटर के प्रोजेक्ट रमजान के जरिए जरूरतमंद अफराद की मदद करें।
$60 की ये गिफ्ट बास्केट जिसकी रिटेल वैल्यू $100 है,
डोनेट करके एक खानदान के 4 अफराद को महीने भर के लिए राशन मुहैया कर सकते हैं। आइए और इस नेक काम में अपना हिस्सा डालिए। मुस्लिम वेलफेयर सेंटर 416-754-8116 टोरंटो से बाहर रहने वाले टोल फ्री 1-866-754-3111
mwcanada.org।
तीसरा प्रोग्राम एक बार फिर से खुश आमदीद। मैं आरिफ मुजफ्फर और अभी आपने डिटेल सुनी। आज मैंने दो चीजें आपके साथ शेयर करनी है। मैं आपको बताया कि मिस श्रीलंका का एक कॉन्टेस्ट था और ये 4 अप्रैल की बात है एंड मुझे लगता है दुनिया में बीमारी इतनी बढ़ गई है। आप कहते हैं मिस वर्ल्ड बनने के लिए या इस तरह के पेजेंट पे, ब्यूटी पेजेंट पे जब जो भी कंटेस्टेंट होते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें उनसे बात करवाई जाती है, उनके बात करने का अंदाज क्या है, उनका बिहेवियर देखा जाता है। यानी ये नहीं कि सिर्फ आपने ब्यूटी देखी और उसके ऊपर खूबसूरती के ऊपर ये कॉन्टेस्ट हो गया ब्यूटी पेजेंट का। मिस श्रीलंका का कॉन्टेस्ट हो रहा था और मिस श्रीलंका के कॉन्टेस्ट में जो अजीबोगरीब वाकया पेश आया, इट्स वेरी स्ट्रेंज वाकया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ एंड आई वॉज सैड। साहब ये जो विनर थी ना मिस श्रीलंका, अच्छा जो विनर थी और उसके उसकी ताजपोशी की गई, मिस श्रीलंका की ताजपोशी की गई, ताजपोशी के बाद मिस वर्ल्ड भी उस स्टेज के ऊपर मौजूद थी। मिस वर्ल्ड ऑफ कोर्स बड़ा होता है और मिस वर्ल्ड ने स्टेज पे आके जो बात कही कि एथिक्स क्या कहते हैं कि जाहिर है एक मिस वर्ल्ड या मिस श्रीलंका होने के लिए जो ब्यूटी पेजेंट है उसकी शख्सियत मुकम्मल होनी चाहिए, उसकी सिर्फ खूबसूरती नहीं, उसकी गुफ्तगू, उसका पास्ट, उसका प्रेजेंट, उसकी हर चीज क्लीन होनी चाहिए। तो मिस वर्ल्ड ने आगे कहा कि इसके लिए ये ताज हासिल करने के लिए जरूरी है कि वो डाइवोर्स ना हो, और इसने उसके जो विनर थी उसके सर से ताज को छीन के रनर्स अप। इट इज इनसेन। मुझे लगता है कि ये कोविड की वजह से दुनिया में जो जहनी बीमारी है ना, इसने सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट की है। चलिए मैं यकीनन ये आपको इसकी तरफ लेके चलूंगी। जब इसकी बात कर रही हूं तो वॉन की एक न्यूज की तरफ आपको लेके जाना चाहती हूँ। इट इज वेरी सैड। वॉन की एक फैमिली थी, देवर मैरिड 40+ ईयर्स से उनकी शादी हुई थी एंड ऑल ऑफ सडन घर में, इट्स अ वेरी सैड न्यूज कि घर में कोविड आया, हस्बैंड वाइफ और उनकी बेटी और बेटी के 2 बच्चे सभी लोग एक ही घर में रहते थे। एक सुबह में माँ को और बाप को सांस नहीं सही आ रहा था, एम्बुलेंस को कॉल किया गया, दोनों को हॉस्पिटल लेके जाया गया, हॉस्पिटल में दोनों थे और वो कहती रात को 2 बजे उठी तो उसने देखा कि उसके हस्बैंड की जो बेड था उसके गिर्द काफी सारे डॉक्टर्स इकट्ठे हुए थे। अल्टीमेटली उनके हस्बैंड को वेंटिलेटर के ऊपर लेके चले गए। ये कहती है कि मैं उसको कॉल करके आई मेड हिम, बार बार मैं उसको कहती थी कि आई लव यू, आई लव यू, और अल्टीमेटली जनाब हस्बैंड की डेथ हो गई है। वाइफ जो है वो वॉक नहीं कर सकती, वो मुकम्मल तौर पे कोविड से रिकवर नहीं हुई, बेटी कोविड का। ये वॉन की फैमिली है। अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट जो हमें बार बार आप तक एक पैगाम पहुंचाने के लिए कह रही है, साहब हमारी जिंदगियां हमारे अपने अख्तियार में हैं, यानी प्रिकॉशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मास्क जरूर पहनिए आप, जो डिस्टेंस है उसको मेंटेन करके रखें, मिनिमम 2 मीटर्स का डिस्टेंस। ऑफ कोर्स जब मास्क मेरे पे भी होगा, मेरे सामने वाले पे भी, और मिनिमम 2 मीटर्स का डिस्टेंस होगा तो हम अपनी बचत भी कर सकते हैं और अपने प्यारों की बचत भी कर सकते हैं। कोविड होने के बावजूद हमारी इकॉनमी किस संत में जा रही है, जब मैंने आज प्रॉमिस किया था, आई एम सॉरी आई एम 17 मिनट्स लेट इन द शो। हमारी मैं जब 1995 में मैं और मुजफ्फर आए ना तो एक नाम पूरे टोरंटो में सुनाई देता था, वो अदनान बशीर। अदनान बशीर इस वक्त सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं सिटीस्केप के एंड ही डज हैव यानी पूरी जिंदगी का तजुर्बा रियल स्टेट के साथ उनका है, इन्वेस्टर्स के साथ भी डील करते हैं। کانڈو کی مارکیٹ اس وقت کس طرف جا رہی ہے، ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ کس طرف جا رہی ہے. آج پروگرام کے پہلے حصے میں آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا تھا کہ 2020 جب یہ کووڈ کا آمد ہوئی تھی تو مارچ 2020 میں جو سیلز ہوئی تھیں، اگر مارچ 2021 کو ہم اس سے کمپیئر کرتے ہیں تو 97% آپ کو انکریز ملے گا. یعنی تب 7,000 کچھ پراپرٹیز سیل ہوئی تھیں، ویئر ایز اس دفعہ مارچ میں تقریباً 15,600 کے قریب پراپرٹیز سیل ہوئی ہیں. ایوریج پرائس کا جب ہم نے ذکر کیا تو ایوریج پرائس اگر ٹاؤن ہاؤس کی دی ہے تو وہ 800+ 8,500 پلس، ویئر ایز آئی پرسنلی ہیو سین ان وٹ بی 9.5 لاکھ کا بھی ٹاؤن ہاؤس بک ہے. اگر آپ ڈیٹیچ کی بات کرتے ہیں تو ڈیٹیچ کی پرائس، ایوریج پرائس کی ہم بات کرتے ہیں، اگین اٹ ڈیپینڈز اپان دا ہوم کنڈیشن ایز ویل، وچ از 1,000,000+. اور اگر ہم سیمی ڈیٹیچ کی، اور اگر ہم ڈیٹیچ کی بات کرتے ہیں تو ایوریج پرائز 1.4 یعنی 14 لاکھ سے زیادہ. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ایوریج ہوم. تو ریئل اسٹیٹ کس سمت میں جا رہی ہے؟ بہت سے لوگوں کو میں نے خود جب سے میں ریئل اسٹیٹ میں آئی، میں نے بس دیا یہ ببل ابھی پھٹا ابھی پھٹا ابھی پھٹا ابھی پھٹا، اور یہ ببل پھٹنے کا نام ہی نہیں دے رہا. عدنان بشیر کا بہت شکریہ کہ آج ہم جب ہم نے ان سے ریکویسٹ کی تو عدنان میرے ساتھ آئے. ایکچولی عدنان نے مجھے کال کیا اور مجھے کہنے لگے کہ ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے تھنگز آر گوئنگ فائن، بٹ یو نو آئی ایم ناٹ، میں اپنی باقی چیزوں میں زندگی میں بھی مصروف ہوں. تو عدنان نے ایز مائی ینگر برادر، ایز مائی یو نو، جیسے ہم بڑوں کو بعض اوقات کرتے ہیں، تو مجھے کہنے لگے کہ عارفہ بھائی جی، میں آپ کو ایک ایڈوائز کروں گا کہ آپ کنڈومینیم ضرور بک کرا لیں، ایک یا دو. میں نے کہا میری لاٹری نہیں ابھی نکلی. عدنان، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم.
وعلیکم السلام،
سب سے پہلے تو عدنان بہت شکریہ آپ نے مجھ کو ایڈوائز کیا. اینڈ یس، آئی ریمبر آج سے 6 سال پہلے 7 سال پہلے آپ نے مجھے ڈاؤن ٹاؤن میں ایڈوائز کیا تھا. یس، اٹ واز اے رائٹ موو. اینڈ آف کورس وہ کہتے ہیں نا، قسمت دی رتی ایک چنگی تولا عقل دا کم نہ آمدا ہے، اور اگر اچھے ساتھی ہوں تو بہتر ایڈوائز بھی کر دیا کرتے ہوتے ہیں. کیا فیل کرتے ہیں اس وقت؟ ایک خوف ہے کہ شاید اس وقت انٹرسٹ ریٹس بہت کم ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ ہے، اس لیے شاید من مانگی قیمت سیلر لے رہا ہے اور بائر اس قیمت کو پے کرنے کے لیے بھی تیار ہے. آئی نیڈ یور ان پٹ.
دیکھیں عارفہ جی، وہ امین اگین، وہ جیسے آپ نے خود ہی اپنی اس میں کہا کہ یہ آج سے نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ ایٹ لیسٹ ہر سال ہی میں پچھلے ایٹ لیسٹ 10 سالوں کی، سے زیادہ میں 10 سالوں کی بات کرتا ہوں، تو سو بیسکلی ہر سال ہی لوگ یہ کہتے ہیں یو نو کہ ریئل اسٹیٹ بڑی مہنگی ہو گئی ہے، لوگ کیسے افورڈ کریں گے کیسے افورڈ کریں گے. بٹ ریئلٹی ہے کہ لوگ مارکیٹ افورڈ کرتی ہے تو مارکیٹ کی ویلو بڑھتی جا رہی ہے نا، ہر سال بڑھتی جا رہی ہے. تو میں صرف ایک سال کا فوکس نہیں ہونا چاہیے، یہ 10 سال پہلے بھی یہ تھا، 9 سال پہلے بھی یہ ایگزیکٹلی کنورسیشن تھی، 8 سال پہلے بھی، 5 سال پہلے بھی، 3 سال پہلے بھی، اینڈ دیٹ از ایگزیکٹلی واٹ از ٹوڈے. مطلب مارکیٹ میں جینون، پھر مارکیٹ میں مس ہوتا تھا میری اوپینین میں کہ یہ کینیڈا میں بہت ساری ریئل اسٹیٹ فورنرس کی وجہ سے مہنگی ہو جاتی ہے، اور اگر یہ آپ لاسٹ 12 مہینے کی گروتھ دیکھیں تو اس کا تو فورنر سے کوئی تعلق نہیں نا، کوئی یا نہ کوئی فورنرز فورن انویسٹمنٹس کوئی اتنی ہو رہی کینیڈا میں، کیونکہ فورنرز آ نہیں سکتے، فورن اسٹوڈنٹس نہیں ہیں یہاں پر، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو لاٹ آف دس ایکٹیویٹی از لوکل، وچ شوز کہ مارکیٹ میں انہیرنٹ لوکل اسٹرینتھ ہے. تو مگر یو نو، ان ساری باتوں کے باوجود میں جو ایک کوشچن پوچھتا ہوں لوگوں سے، رائٹ، کہ اگر آپ کے پاس آج اپرچونیٹی ہو 5 سال پہلے پیچھے جا کے ریئل اسٹیٹ خریدنے کی، تو آپ اس اپرچونیٹی کو اویل کریں گے؟
فار شیور
101% آئی ایم شیور ہر ایک ہی آلموسٹ یہ آنسر ہوگا کہ ہم کریں گے، رائٹ. اور آپ نہ صرف اس اپرچونیٹی کو اویل کریں گے، آپ اس کو اس کی میکسیمم لمٹ تک جا کے اویل کریں گے. آپ کو جو بھی آپ کی میکسیمم لمٹ ہوگی، ایک پراپرٹی خریدنے کی، دو کی، آدھی کی، لاکھ کی، آپ ان کو، کیونکہ آپ یو نو آبویسلی اگر آپ کو 5 سال پہلے کی پرائسز یا آپ کو پتا ہو کہ ہسٹری میں آپ واپس جا سکیں. مگر دین آئی ہیو نیکسٹ کوشچن، مجھے کوئی ایک فنڈامینٹل مارکیٹ میں آپ یو نو شو کر دیں. اینڈ دس از واٹ اے پیپل، میں آئی ہیو دا سیم کوشچن ود نارمل کلائنٹس، ود مائی فرینڈز اینڈ فیملی، اینڈ ود سم سینئر اکانومسٹ ایز ویل ایز یو نو ویری سینئر بینکرز. میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، مجھے ایک کوئی فنڈامینٹل دیں مارکیٹ میں जो ये कह सके कि आने वाले 5 साल अगर पिछले 5 सालों से बेहतर नहीं होंगे तो एटलीस्ट सेम नहीं होंगे. एंड रियलिटी इज देयर इज नॉट इवन वन पर्सन हु हैज बीन एबल टू गिव मी इवन वन यू नो इट्स फंडामेंटल टू शेक ऑन इट. तो व्हाई ये एक इमोशनल सेंटिमेंट के प्राइसेस बड़ी बढ़ गई हैं. Nobody has even been able to give me even one single fundamental to show कि आने वाला time उतना अच्छा नहीं होगा. आपने अभी interest rate का sorry तस्करा किया, तो interest rate जहां पर है I agree कि यहां से बढ़ेंगे, मगर अगर आप interest rate के पिछले की 5 साल की average देखेंगे और जो आने वाले अगले 5 साल है right, वो दोनों आने वाले 5 सालों की जो average interest rate है वो पिछले 5 सालों के average interest rate से ज्यादा नहीं होगा. हाँ आज हम सबसे लोस पर हैं, मगर ग्रोथ तो हर साल होती रही है, 5 साल छोड़े हर 10 पिछले 20 सालों से ग्रोथ हो रही है राइट. तो मगर क्योंकि हम अभी 5 साल की बात कर रहे हैं तो पिछले आगने वाले 5 सालों में अभी पीछे वाले 5 सालों का इंटरेस्ट रेट ठीक है एवरेज सेम रहेगी. वो मतलब आप एवरेज निकालेंगे पिछले 5 सालों का मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, बट आई विल एक्सपेक्ट होगा वो एवरेज 3% के आसपास होगी. तो वही एवरेज आती जाएगी. हाँ इतना लो नहीं रहेगा
अदनान, एक खौफ जो लोगों के बीच में है चाहे वो स्टॉक मार्केट हो चाहे वो रियल स्टेट की मार्केट हो, ये कभी न कभी अपने आप को बैलेंस करती जरूर है. और जाहिर है जब 88 से एंड आई हैवन सीन 2009 में भी प्रॉब्लम आई थी बट यू नो इमीडिएटली रिकवर कर गई. वो जो एक खौफ दिला दिया जाता है कि 1988 से 1992 तक या आई वॉज लुकिंग एट द प्रीवियस रिकॉर्ड 1918 से लेके 1932 तक अगर आप आ जाते हैं तो कहाँ रियल स्टेट इतनी सस्ती हो गई थी, लोगों ने बड़े बड़े मेंशन ले लिए थे अल्टीमेटली चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, उस जमाने में तो इंटरनेट भी नहीं था एंड अल्टीमेटली एवरीबडी लॉस्ट एवरीथिंग. 2018 से लेके उस जमाने के बाद फिर मैं 88 से 92 में आती हूँ और मुझे लगता है क्या इस दफा हर चीजें ऑपोजिट होंगी उन तमाम चीजों से, क्योंकि आपको तब भी याद होगा तब भी स्पेनिश फ्लू आया था, वॉर हुई थी और उसके बाद फिर पैसे का बहुत ज्यादती हो गई थी, लोगों ने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया था, फिर उसके बाद एकदम से मामला बिल्कुल गड़बड़ हो गया था कि लाइनों की लाइनें लग गई थी स्टॉक्स को बेचने की बात कर लें या आप बॉन्ड्स को बेचने की बात कर लें और लोग अपनी प्रॉपर्टी में से खड़े खड़े निकल के चले गए थे. तो वो मैं आज आपसे क्लैरिफिकेशन चाहती हूँ क्योंकि बहुत से लोगों को कहते हुए डर लगता है, बहुत से लोग अपने तौर पे अंदर से खौफजदा हैं जो बड़ा सोच के कदम उठाना चाहते हैं.
देखें आपका भाई फ्रेंकली इन टर्म्स ऑफ स्पेनिश फ्लू दैट्स अ लॉन्ग टाइम अगो. तो मेरा कल मतलब जैसे जैसे चीजें चेंज होती रही है ना, अब जैसे प्रोडक्टिविटी है आज वो नहीं है जो आपसे 20 साल पहले भी थी, लेट अलोन 40 साल पहले 50 साल पहले और 100 साल पहले.
सही,
ऑब्वियसली देयर डिफरेंट आई मीन वेरी डिफरेंट इक्वेशन, बट आई मीन जस्ट मैं उसको बड़े बेसिकली टच अप करूंगा. लेकिन स्पेनिश फ्लू की जो आप रेफरेंस दे रही है उसमें देयर वाज लॉट ऑफ फर्स्ट ऑफ ऑल इट वाज लॉट मोर डेडली ओके देन कोरोना वायरस, ह्यूजली सिग्निफिकेंटली मोर डेडली अगर आप प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन और उसमें उसकी जो डेथ है उस वक्त की ग्लोबल पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो वो बहुत इससे सिग्निफिकेंटली मेजर होती एंड इट इम्पैक्टेड ऑफ पार्ट ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, अब इस दफा अगर आप देखेंगे तो एक तो ये ऑब्वियसली दिस इज एज आई मीन आई डोंट वांट टू डिमीन द सीरियसनेस ऑफ कोविड 19 बट ऑल आई एम सेइंग इज कि उसके उस पर्सपेक्टिव से दिस इज अ मच लेसर ऑफ अ इशू. फिर ये कि इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्टिविटी राइट, ऑब्वियसली उस जमाने में जस्ट टू यूज फॉरगेट अबाउट वो तो 100 साल पहले, मैं तो 20 साल पहले की भी बात कर सकता हूँ अगर ये चीज होती. ऑब्वियसली उस वक्त आपके पास हमारे पास इंटरनेट के टूल्स प्रोडक्टिविटी टूल्स कंप्यूटर्स वगैरह नहीं थे कि लोग घर बैठ के काम कर सकते थे, घर बैठ के एक इन टच कर सकते थे. मॉडर्न मेडिसिन इतनी ऑब्वियसली नोवेल क्लोज वेस्ट सोफिस्टिकेटेड थी कि यू नो कि लिटरली आप देखेंगे जो वैक्सीन डेवलप हुई है ये ग्लोबली रेकर्ड है कि आज से पहले इसके करीब भी कोई टाइम फ्रेम नहीं था वैक्सीन को डेवलप करने का राइट. तो यू नो यूजली 4 से 5 साल की साइकिल्स होती थी ऑन एवरेज, And now they were able to, you know, develop vaccines in a matter of months.
Months, you're so, right.
So, so obviously it's a significant difference. फिर ये कि obviously ये जो ये वाली particular crisis है, it's significant difference कि इसमें some part of the economy को impact किया, but some part of the economy has really not been impacted at all. So उसमें जैसे कि अगर आप hospitality में हैं, जैसे restaurant वगैरह में हैं, hotels में हैं, tourism में हैं, ये बड़ी affected industries हैं, right? But अगर आप जाके internet को देखें और वो कंपनीज बूम कर रही हैं, because lot more people are doing that, right?
Yeah, business, so, all the business, online business. आज ही बल्कि मैं report पढ़ रही थी कि हर 17 घंटे के बाद एक बिलियनर दुनिया में पैदा हो रहा है. इट इज टुडेज इंटरनेशनल रिपोर्ट के एवरी 17 आवर्स में एक बिलियनर. क्योंकि स्टॉक मार्केट्स की अगर आप बात कर लें उस हवाले से, यंग जनरेशन के पास पैसा है, दे आर गेटिंग इनटू देयर, तो इट्स अ रिपोर्ट. तो इसका मतलब है कि
लॉट ऑफ वेल्थ बीइंग क्रिएटेड, राइट? और वो इसी वजह से है कि सम पार्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ठीक है ना, जैसे रियल एस्टेट हैज डन वेल, बैंकिंग हैज डन ओके, राइट, इंश्योरेंस हैज डन ओके, तो कुछ इंडस्ट्रीज ना जो बिल्कुल ही इंपैक्ट नहीं, कुछ इंडस्ट्रीज एक्चुअली हैव डन बेटर, एंड सम इंडस्ट्रीज हैव डन वेल, बट ओवरऑल, राइट, बट मोर सो इस तरह जो गवर्नमेंट के पास जो रिसोर्सेज थे. तो मैं आपको बताता हूँ कि जस्ट मैं आई वाज रीडिंग आर्टिकल इन द इकोनॉमिस्ट अबाउट अ मंथ और सो अगो. तो उन्होंने व्हाट दे वर लुकिंग एट वाज के भी अमेरिका में ये कोविड 19 की रिस्ट्रिक्शन की वजह से और लॉकडाउन की वजह से प्रोडक्टिविटी लॉस कितना हुआ है, राइट? सो दैट फिगर वॉज अबाउट $80 billion अ मंथ का उनको एज अ इकोनॉमी लॉस हो रहा था, राइट? बट वॉट वॉज सो इंटरेस्टिंग वॉज कि यूएस गवर्नमेंट और ये जो ये लास्ट $1.9 trillion टूके उससे पहले की बात है, पर यूएस गवर्नमेंट का जो स्टिमुलस था वॉज अबाउट $300 billion अ मंथ. तो लॉस आपका $80 billion का हो रहा था, बट पंपिंग जो गवर्नमेंट करी थी वो 300 billion करी थी, यानी कि